प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरा फजल क्या ही संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तन करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के द्वारा उसके दास से उन बातों को हमने सुना है जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम अवश्य ही परमेश्वर के वचन में से अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन दूर में रह करके भी एक साथ कर सकते हैं। हम धन्यवादित हैं इस रेडियो कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा से प्रभु आप हमें प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। आज जब हम यूहन्ना की पत्री से आपके वचन को अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब आपका वचन उन तक पहुंचे तो प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, एक एक जीवन आप में आनंदित होने पाए, आप में धन्य होने पाए, आपको महिमा देने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपनी दया दृष्टि प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। आज के वचन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु हमें दे दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि हम जीवन पाएं। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है, अर्थात परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। अतः हमें परमेश्वर से मेल करने के लिए उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ही उसके निकट आना है। तो मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना की पत्री 4:11 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:11 में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, इसलिए हमें उसी आधार पर प्रेम करना है। यहां पर यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। मेरे मित्रों, यह पद 10 से संदर्भित है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए पाप बलि होने को दे दिया। यदि हमारे प्रेम में स्वार्थ हो तो वह किसी काम का नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 5:46 में प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? मेरे प्रियो, हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। चाहिए शब्द से यूहन्ना का अभिप्राय आज के पतित भावनात्मक प्रेम से नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 में प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यूहन्ना 15:12 में कहता है, यह मेरी आज्ञा है कि आपस में वैसा ही प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है। मेरे मित्रों, क्या आप यहां अपने विश्वासी भाई से बैर रखकर परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कर सकते हैं? यदि आप अपने विश्वासी भाई से प्रेम नहीं करते तो आपका परमेश्वर की संतान होना संदिग्ध है। जी हां, आज बहुत से लोग दिखावा करते हैं। आज बहुत दिखावा हो रहा है, पीठ ठोंका जा रहा है। किसी को भाई कहना और कलीसिया में सद्भाव प्रकट करना, परंतु क्या आपके मन में विश्वासियों के प्रति चिंता है? क्या आप परमेश्वर के वचन को फैलाने की चिंता करते हैं? क्या आपको उसकी सेवा करने की चिंता होती है? लूका रचित सुसमाचार 23:34 में प्रभु यीशु ने तो क्रूस पर भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पहले मसीही शहीद स्तेफनुस ने भी यही कहा था। क्या आज आप किसी को इस प्रकार क्षमा करते देख सकते हैं, सुन सकते हैं? क्या आप किसी को क्षमा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप अपने दुख देने वालों और हानि पहुंचाने वालों को क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर की संतान होने का दावा कर सकते हैं? यदि वे आपके प्रेम के बदले आपसे प्रेम नहीं कर सकते तो उनका परमेश्वर की संतान होना संदेह में है। यह अग्नि परीक्षा है, इससे कष्ट होता है। मसीही जीवन जीने की शिक्षा देने वाले पाठ्यक्रमों में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। यूहन्ना हमें मसीही जीवन का आधार समझाता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप अन्य विश्वासियों से प्रेम करते हैं? प्रेम इसका आधार है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग यूहन्ना के इस बात को बाइबल के संदर्भ सहित चुनौती देते हैं। वे आदम का, मूसा का, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की, और यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में यशाया ने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, यहेजकेल ने परमेश्वर को दर्शन में देखा आदि उदाहरणों को हम देते हैं और देखते हैं। परमेश्वर दानियल तथा अन्यों पर प्रकट हुआ, तो यूहन्ना कैसे कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा? परंतु यूहन्ना 1 अध्याय उसके 18 पद में यूहन्ना कहता है कि एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। पुराने नियम में मनुष्यों ने परमेश्वर को नहीं देखा था, क्योंकि वह आत्मा है और हम उसके इसी रूप में आराधना करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के उस महिमा को देखा, अर्थात परमेश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट हुआ था। वह अपनी परिपूर्णता में प्रकट नहीं हुआ था। अतः प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के पश्चात यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 9 पद में फिलिप्पुस के कहने पर प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि जिसने उसे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। वह तो मानवीय देह में छिपा हुआ था, तो फिर उन्होंने परमेश्वर को कैसे देखा? जो उसे देखते थे वे उसे पहचानते नहीं थे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर को किसी ने भी परिपूर्णता में नहीं देखा। यह तो आज भी सच है। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु वह विश्वासियों के पारस्परिक प्रेम द्वारा प्रकट किया जा सकता है। संसार प्रभु यीशु को वैसा नहीं देख पाता जैसा वह धर्मशास्त्र में प्रकट है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को वे विश्वासियों के आचरण से ही देख पाएंगे, क्योंकि विश्वासी प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही कारण है कि पौलुस भी कहता है कि हम उसके राजदूत हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को तब तक नहीं जानते थे जब तक कि उसने क्रूस पर अपना प्रेम प्रकट नहीं किया, और पवित्र आत्मा द्वारा वह आज उसे प्रकट करता है। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस लिखता है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और अध्याय 5 ही के पद 8 में उसने लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हां, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह सच है कि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं खोजा, तो परमेश्वर मनुष्यों को खोजने स्वयं इस पृथ्वी पर आया। 2013 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप लिया और वह इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। मैं परमेश्वर के विषय जो कुछ जानता हूं वह मैंने प्रभु यीशु में देखा है। मैं परमेश्वर की भावनाओं और विचारों को नहीं समझता, परंतु प्रभु यीशु का अनुसरण करके मैं परमेश्वर में उसके मन को जान सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि वह किसी के दफन पर कैसा अनुभव करता है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है कि यीशु रोया। जी हाँ, जब लाजर की मृत्यु हुई तो उसके खबर को सुनकर उसके पास गया, यहां तक कि यीशु रोया। मैं जान सकता हूं कि बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें आशीष दी। उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। मैं यह सब इसलिए जान सकता हूं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। इस दुष्ट संसार में हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? दुर्भाग्य से अधिकांश विश्वासी प्रचार करने की अपेक्षा संसार को प्रसन्न करने में व्यस्त हैं। हमारी चिंता का विषय है कि संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, जबकि महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार प्रभु यीशु के बारे में क्या सोचता है, संसार हमारे बारे में क्या सोचता है। जब हम प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी ने कहा है, 20 वर्ष की आयु में हम संसार की चिंता नहीं करते कि वह हमारे लिए क्या सोचता है, 30 वर्ष की आयु में हम चिंतित हो जाते हैं कि संसार हमारे लिए क्या सोचता है, 40 वर्ष की आयु में हमें पता चलता है कि संसार का सोचना वास्तव में सोचना था ही नहीं। यह सच ही है, हमें संसार में गवाह होना है, परंतु कैसे? क्या वचन का प्रचार करके? जी हां, यह अति महत्वपूर्ण है। परंतु संसार प्रेम का भूखा है, वे नहीं जानते कि प्रेम क्या है। उनकी प्रेम की परिभाषा यौन लालसा है। वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे नहीं जानते हैं कि वह कैसा महान है। वह हमारे द्वारा प्रकट किया जा सकता है, आपके द्वारा प्रकट किया जा सकता है। लिखा है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, उसका प्रेम हम में विकसित हो गया है, वह हम में विकासमान है। संसार को यह प्रेम पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देता है, परंतु विश्वासियों में संसार ने इस प्रेम को देखा है, और जिन्होंने भी इस प्रेम को देखा है उन्होंने उस प्रेम को चखा भी है। पहला यूहन्ना के पत्र 4 अध्याय उसके 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखिए, यह हम में अंतरवासी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। यह मानवीय प्रेम नहीं है, हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पौलुस कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास, दीनता, संयम है, जिसके विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस सूची में सबसे ऊपर प्रेम है। अधिकांश विचारकों का मत है कि प्रेम डाली है, अन्य गुण उसमें लगते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 13 को पढ़कर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रेम से आनंद एवं शांति उत्पन्न होते हैं। यूहन्ना की पत्री में भी हम इसी प्रकार से देखते हैं। डॉक्टर आयरनसाइड चीन के शासक चियांग काई शोक की एक घटना लिखते हैं। कुछ समय पूर्व हमने चीन के राष्ट्रपति के मन परिवर्तन का ब्यौरा पढ़ा था। हमारी आशा थी कि उसके मन में वास्तविक कार्य हुआ, परंतु समय बताएगा। मैं पढ़ रहा था कि अपने अंगीकार से पूर्व वह कैसे अपनी पत्नी के पास आया, जिसने बहुत पहले उद्धार का अनुभव पा लिया था। उसने कहा, मैं इन विश्वासियों को समझ नहीं पाता, क्यों वे यहां अत्यधिक घृणित माने जाते हैं, उन्हें लूटा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, अनेक जन मार डाले जाते हैं, उन्हें घोर यातना दी जाती है, परंतु मैं एक को भी विरोध करते हुए नहीं देखता, और जब भी उन्हें चीन के लिए अर्थात हमारे लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है तो वे सदैव तैयार रहते हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाता। उसकी पत्नी ने कहा, आप जो देखते हैं वह मसीही विश्वास का सार है। जी हां, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मसीही विश्वासी हैं। मेरे मित्रों, आज इस प्रेम को विश्वासियों में देखने की अन्य जातियों को आवश्यकता है। आज इस शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। आपने इसे कितनी बार आराधनाओं में, रेडियो पर और सभा में सुना है? क्या यह शिक्षा आधारभूत और महत्वपूर्ण मानकर सिखाई जाती है या इसे हल्के में लिया जाता है? परमेश्वर का यह प्रेम जब परिवार में हो तो आपको पत्नी की भूमिका की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं कि उसे पति के अधीन रहना है और पति घर का मुखिया है। इफिसियों के पत्र 5:25 में पौलुस लिखता है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यदि पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और वह ऐसी स्त्री है जिसके लिए वह अपनी जान दे सकता है और पत्नी कहे कि वह उसे पूरे दिल और जान से प्रेम करती है और उसके लिए कुछ भी कर देगी, तो मेरे विचार में आपको नियमों की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक स्मारक देखा जिसमें एक स्त्री के साथ 5 बच्चे हैं और उसके हाथ में बंदूकें हैं। उसका पति उसके सामने है, वह बंदूक में गोलियां डाल रही है और उसका पति उसकी रक्षा में गोलियां चला रहा है। उस स्त्री को यौनाचार पर भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके पास 5 बच्चे हैं। वह आपको शिक्षा दे सकती है। उसे शिक्षा की आवश्यकता नहीं कि अपने पति को कैसे संभाले। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को समर्पित हैं। प्रेम कैसा महान है। काश परमेश्वर की संतान अपने आसपास के सब लोगों में परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन कर पाए ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम की सत्यता को जान सकें। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। 4 यूहन्ना कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है और पवित्र आत्मा आपके मन में इस प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। हम अपने आप में इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। मेरा स्वभाव है कि जब कोई मुझे मारे तो मैं पलटकर उसे मारूं। परंतु यदि हम में पवित्र आत्मा है तो हम संसार को ऐसा प्रेम दिखा सकते हैं कि यदि कोई हमें मारे तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसे हम आशीष दे सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम पर पवित्र आत्मा अंतर्वास करे। 1 यूहन्ना 4:14 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यह सुसमाचार आधारित गवाही है। हमें इसी संदेश को प्रसारित करना है। हमारे प्रेम का उद्देश्य यही है। जी हां, मैं फिर से कहता हूं कि मसीही प्रेम भावनात्मक और छलकता हुआ नहीं होना है। यह प्रेम सामाजिक लगाव या यौनाचार नहीं है। यह कलीसियाई भोज भी नहीं है। यह प्रेम वह है जो इस संसार में पापियों तक मसीह यीशु को पहुंचाता है। हम अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करते हैं। इस प्रेम को समझना कठिन है। मैं देश के अनेक राज्यों में प्रचारकों के साथ रहा हूं। उनमें मैंने देखा है कि वे मनुष्यों से प्रेम करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग प्रेम करने के लिए बहुत कठिन या कठिनाई महसूस करते हैं, परंतु उनमें सबके लिए प्रेम है। इस प्रेम को देखना अति महान है कि वे क्या करते हैं। इन लोगों में सुसमाचार पहुंचाते हुए आप देखेंगे, और परमेश्वर ने उन्हें यही आज्ञा भी दी है, जब वे वहां पहुंचते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। जब वे वहां पहुंचे तब शायद वे उन्हें प्रेम नहीं करते थे, परंतु उनमें सेवा करने के बाद, प्रतिदिन मिलने के बाद, आप उनसे प्रेम करने लगते हैं, अन्यथा आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। यूहन्ना हमें इसी बात को बार बार कह रहा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों से भी प्रेम करने पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए प्रेम करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के बिना प्रेम निश्चित रूप से असंभव है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आज आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करते हैं? यदि नहीं, तो आज प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, मैं प्रेम करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी अगुवाई करें। आप निश्चय जाने कि प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपको मदद करेंगे, क्योंकि वह यही चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, या इसलिए नहीं कि हम करें, परंतु इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया है। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसे संभालने का फजल दे दे मुझे, उसे संभालने का फजल दे दे मुझे।